بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج ہم اپنے کارکرم کا آرمبھ سورہ بقرہ کی آیت کرمانک 207 سے 210 تک کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں پرخیات قاری پور زرگری۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ایمان والوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ایشور کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتین دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، تم سب کے سب شانتی میں پرویش کرو اور ایشور کے پرتی سمرپت رہو، اور شیطان کے پد چنوں کا انوسرن نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ پھر یدی تم ان سب اسپشٹ نشانیوں اور چمتکاروں کے آنے کے بعد بھی پھسل کر پد بھرشت ہو گئے تو جان لو کہ ایشور پربھتو شالی اور تتو درشی ہے۔ کیا یہ پد بھرشت اتنے سارے اسپشٹ ترکوں کے باوجود اس بات کی پرتیکشا کر رہے ہیں کہ ایشور اور فرشتے بادلوں کی چھایا میں پرکٹ ہو کر ان کے سامنے آئیں اور ان کے سمکش نئے ترک رکھیں تاکہ یہ ایمان لائیں، جبکہ لوگوں کے مارگ درشن کے بارے میں ایشوریہ آدیش پورا ہو چکا ہے اور سبھی معاملے ایشور ہی کی اور لوٹائے جائیں گے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ آج گروار ہے، دے کی 18 جنوری کی 7 اور جماعت الاول کی 23 تاریخ۔ شروع ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ برابر 7445 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ پتر ویوہار کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں، ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@wsirib.ir، جبکہ ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ شروع ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا نوٹ کر لیں۔ صدا کی بھانتی آپ سب سے پہلے انتراشٹریہ سماچار سنیں گے، اس کے پشچات دینک کاریکرم ہوگا راجنیتک چرچا، اس کے پشچات آپ آیت اللہ مصباح یزدی کے بارے میں وشیش کاریکرم سنیں گے، اور سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا آج کی بات۔ شروتاؤ یہ تو تھی ہماری آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا، اور اب آپ کچھ ہی چھوڑ میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب آپ محمد مہدی سے سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایرانی سینا پرمکھ نے کہا ہے کہ فخری زادے کا بلدہ پرتیرودھ مورچہ طے کرے گا۔ راشٹرپتی روحانی نے کہا ہے کہ پشمی پرجاتنتر بے حد کمزور ہے۔ امریکہ میں ہنگامے اور ہنسا کے بعد جو بائیڈن کی جیت کی اوپچارک پشٹی کر دی گئی۔ پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے نرسنہار کی آلوچنا کا کرم یتھاوت جاری ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔ ایران کے ودیش منتری نے یوکرینی ویمان کی درگھٹنا کی ورشگانٹھ پر ٹویٹ کر کے اپنے سندیش میں کہا ہے کہ درد بھرے دل کے ساتھ فلائٹ سنکھیا 752 کی تراسدی کے پیڑتوں کو شردا سمن ارپت کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے پریہ جنوں کی چھتی کی بھرپائی کر سکے۔ سماچار ایجنسی فارس کی رپورٹ کے انوسار اسلامی گنتنتر ایران کے ودیش منتری محمد جواد ظریف نے بدھوار رات یوکرینی یاتری ویمان کی ورشگانٹھ پر گہرا دکھ ویکت کیا اور کہا کہ یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی۔ ودیش منتری محمد جواد ظریف نے کہا کہ کیول ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انتراشٹریہ مانکوں کے انوسار اس کا معاوضہ دیا جائے، اور جو بھی اس درگھٹنا کے ذمہ دار ہیں انہیں جلد سے جلد جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ محمد جواد ظریف نے انت میں لکھا ہے کہ نیائے ضرور ہوگا۔ ایران کی سشستر سینا کے پرمکھ نے کہا ہے کہ شہید محسن فخری زادے پچھلے 2 دشکوں سے مانوتا کے دشمنوں کے آکروش کا نشانہ تھے۔ ایران کی سشستر سینا کے پرمکھ جنرل باقری نے بل دے کر کہا کہ شہید محسن فخری زادے کا اوشیہ بدلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مہان شہید کا پرتیشودھ اپنا راستہ طے کر رہا ہے، اور یہ پرتیشودھ کب اور کہاں لیا جائے گا اس کا نردھارن پرتیرودھ کا مورچہ طے کرے گا۔ انہوں نے ایران کے مہان پرمانو ویگیانک شہید محسن فخری زادے کے چہلوں کے سمبندھ میں आयोजित शोक समारोह में गुरुवार को कहा कि इस महान परमाणु वैज्ञानिक ने पूरी तन्मयता से ज्ञान विज्ञान का रास्ता जारी रखा और इस रास्ते से एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं हटा। ईरान की सशस्त्र सेना के प्रमुख ने कहा कि शहीद मोहसिन फखरीजादे पिछले 2 दशकों से मानवता के दुश्मनों के आक्रोश का निशाना थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपराधी और बच्चों का हत्यारा जानवी शासन इस महान शहीद से क्रोधित थे। इसी प्रकार जनरल बाकरी ने स्पष्ट किया कि जानवी विश्व में इस्लामी जगत की वैज्ञानिक श्रेष्ठता को सहन करने की ताकत नहीं रखते और जिस दिन से परमाणु तकनीक के क्षेत्र में ईरान ने सफलताएं अर्जित करना आरंभ कर दिया है उसी समय से जानवियों ने मिस्र, इराक और ईरान में परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या आरंभ कर दी। ज्ञात है कि ईरान के महान परमाणु वैज्ञानिक शहीद मोहसिन फखरीजादे को 27 नवंबर 2020 में एक आतंकवादी हमले में तेहरान के समीप शहीद कर दिया गया था। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी घटनाओं और कांग्रेस की इमारत पर हमले को पश्चिमी प्रजातंत्र के कमजोर और आधारहीन होने का चिन्ह बताया है। राष्ट्रपति डॉ हसन रूहानी ने गुरुवार को अमेरिका की हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये घटनाएं ये साबित करती हैं कि पश्चिमी देशों में विज्ञान व तकनीक में विकास के बावजूद लोक लुभावनवाद यथावत मौजूद है और एक लोक लुभावनवादी व्यक्ति 4 वर्षों तक अपने देश की मिट्टी पलीद करता रहा। राष्ट्रपति ने कहा है कि एक अस्वस्थ व्यक्ति ने अमेरिका में सत्ता पर कब्जा करके अपने देश के संबंधों को पूरी दुनिया से खराब कर दिया और अपने देश पश्चिम एशिया, फिलिस्तीन, सीरिया, यमन और दुनिया के बहुत से इलाकों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की है कि कांग्रेस की इमारत में होने वाली घटनाएं पूरी दुनिया और व्हाइट हाउस के अगले शासकों के लिए एक पाठ होंगी। ज्ञात रहे कि अमेरिकी संसद कांग्रेस में बाइडेन की जीत की पुष्टि के लिए बैठक के दौरान ट्रंप के समर्थकों ने इमारत पर धावा बोल दिया था जिसकी वजह से बैठक अधूरी रह गई। अमेरिकी संसद भवन कैपिटल बिल्डिंग के परिसर के बाहर निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा की गई हिंसा और हंगामे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए अपने दोस्त और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह दी है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से कर दिया जाना चाहिए। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत को प्रमाणित करने के लिए संसद के संयुक्त सत्र के लिए संसद भवन के भीतर बैठे थे तभी संसद के बाहर ट्रंप के समर्थकों ने भारी हंगामा कर दिया। हंगामे में ट्रंप समर्थकों और पुलिस के बीच भीषण झड़पें भी हुई जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने जो बाइडेन की राष्ट्रपति चुनाव में जीत की औपचारिक रूप से पुष्टि कर दी है। कांग्रेस की इमारत पर ट्रंप के समर्थकों द्वारा धावा बोलने के बावजूद पर्याप्त इलेक्टोरल वोट प्राप्त करके औपचारिक रूप से बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। कांग्रेस की संयुक्त बैठक जो बाइडेन की जीत की पुष्टि के लिए आयोजित हुई थी लेकिन ट्रंप के समर्थन में 12 इलेक्टोरल वोट पड़ने के बाद ट्रंप के समर्थकों के दावे की वजह से 6 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। नेशनल गार्ड और FBI की घंटों की मेहनत के बाद जब ट्रंप के समर्थक इमारत से बाहर निकले तो कांग्रेस की बैठक दोबारा आरंभ हुई। कुछ राज्यों में वोटिंग के बारे में ट्रंप के समर्थक सांसदों की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया। इस तरह से अमेरिका में चुनाव के परिणाम को बदलने की ट्रंप की सारी कोशिशें नाकाम रह गईं। पाकिस्तान में शिया हजारा मुसलमानों के नृशंस हत्या के बाद इस भयानक अपराध की आलोचना और इसके खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों का सिलसिला यथावत स्वयं पाकिस्तान और कई देशों में जारी है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा और उनके नरसंहार के खिलाफ भारतीय शिया मुसलमानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। 3 जनवरी 2021 को तकफीरी आतंकवादियों ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मच इलाके में एक कोयला खान पर हमला करके 11 शिया खान मजदूरों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। पाकिस्तान में होने वाले शिया मुसलमानों के नरसंहार के खिलाफ जहां पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं अब भारत में भी पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के विरोध में एक बार फिर से आवाज उठने लगी है। भारत की राजधानी दिल्ली में 11 पाकिस्तानी शिया मुसलमानों के नरसंहार की निंदा में हुए एक विरोध कार्यक्रम में शामिल हुए धर्मगुरुओं, विद्वानों और आम लोगों ने एक सुर में पाकिस्तान की इमरान खान सरकार से मांग की है कि वो पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों, विशेषकर शिया मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करें। पाकिस्तान की सरकार ने स्वीकार किया है कि आतंकवादी गुट अमेरिकी समर्थन पाकिस्तान की सरकार ने स्वीकार किया है कि आतंकवादी गुट अमेरिकी समर्थन प्राप्त दाइश के साथ मिलकर अपराध और इस देश की जनता के खिलाफ विध्वंसक कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। समाचार एजेंसी इन्ना की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तुर्की के न्यूज टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा है कि बलूचिस्तान प्रांत में शिया हजारा समुदाय और निहत्थे लोगों के खिलाफ अपराध आतंकवादी गुट दाइश ट्रंप के समर्थन से अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में विशेष आतंकवादी गुट मौजूद है जो इस देश के शिया समुदाय पर हमलों का दिशा निर्देशन कर रहे हैं। उन्होंने हजारा शिया समुदाय के 11 खनिकों पर होने वाले आतंकवादी हमले की ओर संकेत करते हुए बल देकर कहा कि आतंकवादी गुटों ने दाइश का रूप धारण कर लिया है और उन्होंने इस जघन्य अपराध की जिम्मेदारी भी स्वीकार की है। और अंत में यह समाचार कि इराकी अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है। प्राप्त समाचारों के अनुसार इराकी अदालत अर-रसाफा में जनरल शहीद कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस की हत्या की फाइल को आगे बढ़ाने के जिम्मेदार अधिकारी ने ट्रंप की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। इराकी अदालत ने एक विज्ञप्ति जारी करके घोषणा की है कि इस केस से जुड़े लोगों की शिकायतें दर्ज करने और इस संबंध में प्राथमिक जाँच पूरी होने के बाद गुरुवार की सुबह ट्रंप की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया। इराकी अदालत की ओर से जारी होने वाले विज्ञप्ति के अनुसार शहीद जनरल कासिम सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी अल मुहंदिस की शहादत के जिम्मेदारों की पहचान के संबंध में जांच पड़ताल जारी रहेगी, चाहे वो जिम्मेदार इराकी हो या गैर इराकी। तो श्रोताओ, इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा का दैनिक प्रोग्राम लेकर मोहम्मद अली कुम्मी हाजिर है। प्रोग्राम के विषय हैं अमरीकी कांग्रेस पर ट्रंप के समर्थकों का धावा, कांग्रेस के कुछ सदस्यों की अमरीकी राष्ट्रपति को फेडरल सरकार के खिलाफ साजिश के जुर्म में इम्पीचमेंट करके सत्ता से हटाने के लिए बिल लाने की तैयारी, पाकिस्तान में लोगों के जनसंहार में दाइश के साथ आतंकवादी गुटों का सहयोग और कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में किसानों का जारी आंदोलन। चर्चा में पहले, बुधवार को अमरीकी कांग्रेस पर ट्रंप के समर्थकों ने धावा बोल दिया। ये सन 1812 ईस्वी के बाद से अभूतपूर्व घटना है। कांग्रेस के कुछ सदस्य अमरीकी राष्ट्रपति को फेडरल सरकार के खिलाफ साजिश के जुर्म में इम्पीचमेंट करके सत्ता से हटाने के लिए बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। पेश है न्यूयॉर्क से कामरान नजफजादे की रिपोर्ट, साथ ही कायम रिजवी की जबानी।
शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ट्रंप के क्रोधी समर्थक बहुत ही भयानक तरीके से कॉन्फ्रेंस की इमारत में दाखिल होंगे। ٹرمپ کے نمبر ایک کی دشمن نینسی پیلوسی کی کرسی پر جو ہاؤس آف ریپریزنٹیو کی ادھیکش ہیں سمرتھک پیر پھیلا کر بیٹھے، نوٹ لکھے کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور آخر میں فائرنگ کی بھی مدد لینی پڑی۔ کچھ لوگوں کی حالت بہت ہی گمبھیر بتائی جا رہی ہے۔ کھیت سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مہیلا کے ارد گولی لگی جس کے کارن ان کی موت ہو گئی۔ سینٹ کے لوگ کرسیوں کے نیچے چھپ گئے اور پھر اپ راشٹرپتی و سینٹ کے ادھیکش مائک پینس کے ساتھ سرکشت استھان میں کئی گھنٹوں تک چھپے بیٹھے رہے تاکہ حالات نارمل ہوں اور وہ باہر آئیں۔ جو بائیڈن نے ٹرمپ سے مانگ کی کہ ترنت ٹیلی ویژن پر آ کر اپنے سمرتھکوں کو وہ شانت رہنے کی اپیل کریں۔
Our democracy is under unprecedented assault.
ٹرمپ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر سندیش میں اپنے سمرتھکوں سے کہا ہے کہ چناؤ میں ہمارے ووٹ چوری کر لیے گئے ہیں، لیکن اب آپ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیے۔
But you have to go home now.
الہان عمر سہیت کانگریس کے کچھ اور سدسیہ ایک بل تیار کر رہے ہیں جس کے انوسار امریکی راشٹرپتی کو فیڈرل سرکار کے خلاف سازش کے جرم میں امپیچمنٹ کر کے ستا سے ہٹایا جائے گا۔
Privately and publicly pressured Mr. Pence to stop Congress from approving the election results.
اپراشپتی مائک پینس بھی ٹرمپ سے ناراض ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیج پر ٹرمپ کو ان فالو کر دیا ہے۔
Please raise your right hand.
ان دونوں کے بیچ تناؤ اس وقت بڑھ گیا جب ٹرمپ ان پر بار بار دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ سینٹ کی بیٹھک میں الیکٹرل کالج کے ووٹوں کی پشٹی نہ کریں۔ پینس ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے اور ایسا کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹرمپ نے پینس کو بھی نہیں بخشا۔
And that you will well and faithfully discharge the duties of the office.
ABC News کی پترکار کہتی ہیں کہ میں بہت ہی خطرناک استھتی میں ہوں، یہ امریکہ کی راجدھانی ہے نہ کہ بغداد یا کابل۔
Capitol Hill. I'm not in Baghdad. I'm not in Kabul.
امریکی راشٹرپتی ٹرمپ کے سمرتھکوں کے لیے جو بائیڈن کے الیکٹرل کالج کے ووٹوں کی پشٹی سے زیادہ نقصان دہ یہ رہا کہ وہ سینیٹ کا چناؤ بھی ہار گئے۔ جارجیا سے دو ڈیموکریٹ سینیٹ کا چناؤ جیت گئے ہیں۔ اب سینیٹ، وائٹ ہاؤس اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو تین کے تینوں پر ٹرمپ کے ورودھیوں کا اختیار ہو جائے گا۔ کانگریس کی عمارت میں ڈونالڈ ٹرمپ کے سمرتھکوں کے گھسنے کی گھٹنا سن 1812 کے بعد سے ابھوتپورو گھٹنا بتائی جا رہی ہے۔ دوسری اور جو بائیڈن سے شپتھ لینے میں اب دو ہفتے سے بھی کم کا سمے بچا ہے۔ ایسی لہر شروع ہوئی ہے کہ ریپبلکن سینیٹر بھی اب ٹرمپ کا امپیچمنٹ یا پھر ان کے استعفے کی مانگ کر رہے ہیں۔ نیو یارک سے IRIB کے لیے کامران نجفزادے کی رپورٹ۔
پاکستان میں کچھ دن پہلے ہزارہ شیعہ سمودائے کے 11 کھنکوں کا بلوچستان میں ہوا نرسنہار داعش اور آتنکوادی گٹوں کے بیچ سانٹھ گانٹھ کا پتہ دیتا ہے۔ پیش ہے ایک سمیکشا ساتھی محمد مہدی کی زبانی۔
میرا بچے نے میرا کمر توڑ دیا، ظالموں نے بے دردی سے ہمارے 10 بندوں کو ذبح کیے، کوئی جانور بھی اتنی بے دردی۔
پاکستان نے کہا ہے کہ آتنکوادی گٹ امریکہ سمرتھت تکفیری گٹ داعش کے ساتھ مل کر نرسنہار کر رہی ہیں۔ پاکستانی پردھان منتری نے ترکی کے ٹی وی چینل کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ ان کے دیش کے بلوچستان پرانت میں شیعہ ہزارہ سمودائے کی ٹارگٹ کلنگ سہیت نہتھے لوگوں پر ہر طرح کے حملے آتنکوادی گٹوں اور تکفیری داعش کی سانٹھ گانٹھ سے ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ایسے آتنکوادی گٹ موجود ہیں جو بلوچستان کے ہزارہ شیعہ سمودائے کے خلاف ٹارگٹ کلنگ کا سنچالن کر رہی ہیں۔ پاکستانی پردھان منتری نے دیش کے حالیہ آتنکوادی حملے کا الیکھ کرتے ہوئے جس میں 11 شیعہ کھنکوں کا جنسنہار ہوا بل دیا کہ ان آتنکوادی گٹوں نے جو داعش کا روپ دھارن کر گئے ہیں بلوچستان میں کھنکوں کے جنسنہار کی ذمہ داری لی ہے۔ پاکستانی پردھان منتری کا دیش میں شیعوں سہیت لوگوں کے نرسنہار میں آتنکوادی گٹوں کے ساتھ داعش کی سانٹھ گانٹھ کے بارے میں بیان ایسے خطرے کا پتہ دیتا ہے جس کا حالیہ برسوں میں پاکستان کو سامنا رہا ہے۔
شہدا ہے ہمارے، یہ ایک ہی گھر کے ہمارے 5 نوجوان ہیں اور ان کا گزر بسر بھی ہے کہ ان کے والد 60 سال سے اباؤ ہیں، پھر بھی وہ ایک مائنز میں ایز اے منشی کام کرتے ہیں، 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔
داعش کے آتنکوادی حملے کی شروعات قریب 10 سال پہلے سیریا اور عراق میں ہوئی جسے امریکہ اور سعودی عرب سہیت چھیتر کے کچھ عرب دیشوں نے بنایا۔
लेकिन दाइश की आपराधिक गतिविधियों का दायरा धीरे धीरे दक्षिण और पूर्वी एशिया सहित दुनिया के दूसरे देशों तक फैल गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसी जगहें थीं जहां दाइश अपने और अपने क्षेत्रीय क्षेत्र से बाहर के समर्थकों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहुंचा और हालिया वर्षों में उसने इन देशों में अनेक अपराध अंजाम दिए। अमेरिका का अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दाइश का समर्थन करने के पीछे एक बड़ा लक्ष्य अफगानिस्तान में अपनी सैन्य मौजूदगी को जारी रखने के लिए इस देश में जारी अशांति तथा विदेशी फौजियों की कथित उपलब्धियों के हाथ से निकलने का बहाना पेश करना है। पाकिस्तान में दाइश ने इस देश के लश्कर जंगवी और सिपाही सहाबा सहित चरमपंथी गुटों के साथ मिलकर शियों के नरसंहार को लक्ष्य बनाया है। लश्कर जंगवी और सिपाही सहाबा ने शियों के खिलाफ अपनी आइडियोलॉजी बनाई है। अलबत्ता हालिया वर्षों में दाइश के इराक और सीरिया सहित दुनिया के दूसरे देशों में लोगों के खिलाफ अपराध से जाहिर हो गया है कि ये गुट दूसरे धार्मिक मतों के मानने वालों पर भी हमले करते हैं, जैसा कि इराक और सीरिया में ईजदी और सुन्नी संप्रदाय के नरसंहार से इसकी पुष्टि होती है।
ने 4 बजे फोन किया और कहा कि मेरा जहाज लेकर जाओ और जाकर उनको ये पैगाम दो कि किसी सूरत में भी इन हमलावरों को, जिन्होंने 11 शहदा को और लातदार लोगों को जख्मी किया, नहीं छोड़ेंगे। और यही पैगाम मैंने अपनी अजीम अफवाज को भी यहाँ पहुँचते सार दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुजरम नहीं बच सकेंगे, अल्लाह और रसूल के हुक्म से ये नहीं बच सकेंगे।
पाकिस्तान में शियों के खिलाफ चरमपंथी गुटों और दाइश के जारी हमले के मद्देनजर इस देश की सुरक्षा संस्थाओं और सरकार के कमजोर क्रियाकलापों की बहुत आलोचना हो रही है। इससे पहले इस तरह की घटना में इमरान खान ने पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की थी। इस बार की घटना में इमरान खान ने पीड़ितों के परिजनों से अपील की है कि वे लाशों को दफन करें और वे परिजनों से जरूर मुलाकात करेंगे।
और अब भारत का रुख करते हैं। किसानों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर शक्ति परीक्षण के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया। भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मांग न माने जाने पर मई 2024 को देश में आम चुनाव तक आंदोलन जारी रखने का इशारा दिया है। पेश है शमशाद काजमी की रिपोर्ट।
कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली से लगी सीमाओं पर जारी है और कल सरकार और किसानों के बीच होने वाली नवे दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसानों ने आज शक्ति परीक्षण किया और ट्रैक्टर लेकर वे सड़कों पर आए। अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर के साथ सड़क पर उतरे। किसानों ने इसी प्रकार के MP एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर रैली निकाली। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान एक्सप्रेस वे पर जमा हुए और सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था पलवल की ओर निकला, जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देने के लिए यहां रैली निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। उनके अनुसार आज की रैली इसकी रिहर्सल है। टिकैत ने कहा कि हम मई 2024 तक, जब देश में आम चुनाव होंगे, आंदोलन के लिए तैयार हैं।
ट्रैक्टर रैली चलेंगे, लेकिन आज रिहर्सल है और 26 तारीख की ये तैयारी है। किसम से
कहां से कहां तक आपका दौरा रहेगा?
ये यहां से रहेंगे, हम डासना जाएंगे, डासना से फिर अलीगढ़ रोड पर जाएंगे और अलीगढ़ रोड पर वहां रुकेंगे, वहां लंगर भंडारा होगा, फिर वहां से वापसी आएंगे। ये रहेगा
नोएडा वाले जो ट्रैक्टर हैं सारे, उनको कैसे?
वो नोएडा वाले ट्रैक्टर आगे जाएंगे, वे पलवल तक जाएंगे। ये दो पार्ट में कराएं क्योंकि 130 किलोमीटर के आसपास बैठता है ये यहाँ से, और अगर पलवल हम जाएंगे तो लंबा बैठता है, तो इनको दो हिस्सों में कर दें।
किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों की खरीदारी के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। खराब मौसम के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर उनका धरना आज 43वें दिन भी जारी रहा। केंद्र सरकार कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रही है, लेकिन किसानों का मानना है कि ये कानून किसान विरोधी हैं, जिन्हें सरकार वापस ले। सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। उधर किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर उच्चतम न्यायालय ने चिंता जताई है और केंद्र से पूछा है कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर नियमों का पालन किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया और किसानों को कोविड से सुरक्षा नहीं मिली तो तबलीगी जमात जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। अब पेश है आयतुल्ला मिसबाह यजदी के बारे में विशेष प्रोग्राम, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का आखिरी प्रोग्राम आज की बात।
श्रोताओं, आयतुल्ला मोहम्मद तकी मिसबाह यजदी के निधन पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। सैयद मीसम का सलाम स्वीकार कीजिए। दो जनवरी 2021 को इमाम खुमैनी शैक्षिक अनुसंधान संस्थान के प्रमुख और गार्डियन काउंसिल में खुरासान रजवी प्रांत के सदस्य आयतुल्ला मोहम्मद तकी मिसबाह यजदी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर ने पूरे ईरान और मुस्लिम जगत को शोकाकुल कर दिया। ईरान की इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, आयतुल्ला मिसबाह यजदी का निधन धार्मिक शिक्षा केंद्र और इस्लामी ज्ञान के क्षेत्र के लिए एक बड़ा नुकसान है। वो एक प्रख्यात विचारक थे, एक योग्य प्रबंधक, सत्य को बयान करने में एक कुशल वक्ता थे, जो सीधे रास्ते पर दृढ़ता के साथ अग्रसर थे। धर्म निष्ठा उनके जीवन की शुरुआत से अंत तक उनकी एक विशेषता थी। एकेश्वरवादी ज्ञान के मार्ग में बड़ी सफलता ईश्वर की ओर से उनके लिए एक प्रतिफल है। मोहम्मद तकी मिसबाह यजदी एक धर्मगुरु और दार्शनिक थे। 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद उन्होंने धार्मिक शिक्षा केंद्र और विश्वविद्यालय सहयोग कार्यालय की स्थापना तथा धार्मिक शिक्षा केंद्र में व्यवस्था के परिवर्तन और पुनर्निर्माण की दिशा में एक सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने बाकिर अल उलूम साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन और उसके बाद कुम स्थित इमाम खुमैनी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। वे गार्डियन काउंसिल में खुरासान रजवी प्रांत के निर्वाचित प्रतिनिधि, कुम सेमिनरी टीचर्स एसोसिएशन के सदस्य, अहले बैद विश्व परिषद के पूर्व अध्यक्ष और धार्मिक शिक्षा केंद्र के वरिष्ठ शिक्षक थे। उन्होंने धार्मिक शिक्षा केंद्र के वरिष्ठ उस्तादों से विभिन्न इस्लामी विषयों का ज्ञान प्राप्त किया और उसमें काफी अध्ययन किया। धर्मशास्त्र में उन्होंने आयतुल्ला बुरुजर्दी, अराकी, इमाम खुमैनी और बहजत से लाभ उठाया और 27 साल की उम्र में वो इश्तिहाद के दर्जे पर पहुंच गए। महान उस्तादों के बीच स्वर्गीय अल्लामा तबाताबाई से परिचय और आध्यात्मिक और रहस्यवादी गुणों की समझ के कारण उन्होंने कुरानी ज्ञान और उसकी व्याख्या को पढ़ाने का अधिक प्रयास किया और इस उद्देश्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सबसे पहले अल्लामा की कुरान की व्याख्या की क्लासों में भाग लेकर और उसके बाद उनके निजी दिशा निर्देशों के आधार पर पवित्र कुरान की सुंदर आयतों में चिंतन मनन सीखा और फिर खुद भी इस विषय में विशेषज्ञ बन गए। वो इस वादी में इतना आगे गए कि अल्लामा ने उनके गहन दृष्टिकोणों का उपयोग करने के लिए प्रकाशित होने से पहले तफसीर अल मीज़ान को ایک بار پڑھنے کے لیے انہیں دیا۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے دھارمک شکشا کیندر کے پاٹھیکرموں کا ادھیان کرنے کے ساتھ ہی بھوتکی، رسائن، وگیان آدی کی کلاسوں میں بھاگ لیا اور ودیشی بھاشاؤں میں فرینچ اور انگریزی بھی سیکھی۔ اسی پرکار انہوں نے اپنا ادھکانش سمے درشن شاستر کے ادھیان میں بتایا۔ درشن کے پرتی ان کے جھکاؤ کا کارن علامہ کے پرتی ان کا گہن آکرشن اور ترک کے آدھار پر اسلامی وشیوں میں ان کی روچی تھی۔ ایک وشیش دارشنک پدھتی کا اپیوگ کرتے ہوئے انہوں نے اس کھیتر میں کچھ نئے وچاروں کو آگے بڑھایا۔ اس پرکار سے کہ انہیں درشن شاستر کے پرمکھ ادھیاپکوں میں سے ایک مانا جاتا تھا اور ان کی آموزش فلسفہ نامک پستک وبھن سانسکرتک کیندروں میں پڑھائی جاتی ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی دکش شکشکوں کے پرشکشک کے علاوہ ونمر آتما، اتکرشٹ نیتکتا، مضبوط ترک، پرگتیشیل وچار اور گہری انتر درشتی کے سوامی تھے، جس کے کارن آیت اللہ یزدی نے بودھک سندیہوں اور دھرم ویرودیوں کا ٹھوس جواب دیا۔ درجنوں دارشنک اور دھارمک پستکیں لکھ کر انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام ایک آدرش دھرم ہے اور سماج شاستر، منوویگیان، شیکشک وگیان اور انیہ وشیوں میں کوئی ایسا کھیتر نہیں ہے جس میں اسلام نے درشٹیکون پیش نہیں کیے ہوں۔ اسلامی کرانتی کے سپریم لیڈر چھاتروں کے پرشکشن کو آیت اللہ یزدی کی ایک ایسی سفلتا مانتے ہیں جو راہ حق سنستھان اور امام خمینی شیکشک اور انوسندھان سنستھان میں ان کے پریاسوں کا پریڑام تھی۔ ان کا کہنا ہے، سوبھاگیہ سے قوم میں آیت اللہ مصباح یزدی کی سفلتاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے کئی ودوانوں کے وپریت کہ جن کے گن خود ان تک ہی سیمت رہے، اچھے چھاتروں تک اپنے گنوں کو استھانانترت کیا۔ ایک انیہ استھان پر سپریم لیڈر نے کہا، میں جناب مصباح کو لگ بھگ 40 ورشوں سے جانتا ہوں اور ان سے ایک دھرم شاستری، دارشنک، وچارک اور وشیشک کے روپ میں شردھا رکھتا ہوں۔ اگر ایشور نے ہماری ورتمان پیڑھی کو علامہ طباطبائی اور شہید متاری جیسی مہان ہستیوں سے لابھ اٹھانے کا اوسر نہیں دیا تو ایشور نے ہمارے سمے میں اس کمی کو ایسی مہان ویکتتو کے مادھیم سے پورا کر دیا۔ پوتر قرآن مہان ایشوریہ چمتکار اور اسلام کے امر ہونے کا پرماڑ ہے۔ یہ دیویہ پستک وبھن سازشوں کے باوجود پریورتن سے سرکشت ہے اور مانو سماج کو وچلن اور وکرتی سے مکتی پردان کرتی ہے۔ قرآن کی ایک وشیشٹ وشیشتا انسانوں کے مارگ درشن اور نیتر کی گارنٹی ہے۔ ایشور دنیا کے سبھی لوگوں کو سمبودھت کرتا ہے اور اس پرکار قرآن کے سروبھومک سندیش کی گھوشنا کرتا ہے کہ جو کوئی بھی قرآن اور اس کی شکشاؤں پر عمل کرے گا اسے سب سے استھر مارگ کی اور نردیشت کیا جائے گا۔ آیت اللہ مصباح یزدی قرآن کے ویاکھیاکار تھے اور ان کا پورا چرتر قرآنی تھا۔ جب ان کی ماں گربھوتی تھی تو انہوں نے سپنا دیکھا کہ جس نے جنم لیا ہے وہ قرآن ہے۔ اس سپنے کی ویاکھیا میں ان سے کہا گیا کہ آپ کا بچہ قرآن کا ویاکھیاکار بنے گا۔ واسطو میں سمکالین سمے میں آیت اللہ مصباح قرآن کے ادتیہ ویاکھیاکار تھے۔ سورگیہ آیت اللہ مصباح یزدی دوارا کی گئی قرآن کی ویاکھیاؤں کے ادھیان سے ان سبھی چھاتروں اور ودوانوں کو لابھ پہنچ سکتا ہے جو اسلامی وچار اور اسلامی وشیوں میں روچی رکھتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی کا درشٹیکون راجنیتک وچار اور ویوہار کے کھیتر میں کافی مہتوپورن تھا۔ آیت اللہ مصباح یزدی کے راجنیتک وچار دھرم نرپیکشتا سے الگ ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ دھرم میں ایسے اپائے ہیں جس میں راجنیتک ویوستھا کے کاریہ کو پریبھاشت کیا گیا ہے۔ اسلامی سماج کو ایک ایسے لکشیہ کی اور بڑھنا چاہیے جس کا انت کلیان ہے، جبکہ آدھونک وچار ادیشیہ پورن نہیں ہے یا ان کا لکشیہ سکھ، سرکشا اور سمانتا ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی کی وشیشتاؤں میں سے ایک لوک تنتر، اسلامی شاسن اور دھارمک لوک تنتر کے بارے میں وچار پرستت کرنا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ آج ہمیں ان دھارناؤں کی ایک شرنکھلا کا سامنا ہے جو سوبھاوک روپ سے اسلامی نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ایک سنیکت بھاشا کی ضرورت کے تحت ہمیں ان دھارناؤں پر چرچا کرنی چاہیے اور اس بارے میں اپنی استھتی کو اسپشٹ کرنا چاہیے۔ کچھ اودھارنائیں جیسے کہ مانوادھیکار اور لوک تنتر نے پشچمی سنسکرتی میں پارلوکک مولیہ کا روپ لے لیا ہے۔ ऐसी अवधारणाओं का विरोध करना बहस के द्वार को बंद करना है और उसके प्रति निष्क्रिय रूप से व्यवहार करना भी सही नहीं है। इस्लाम ऐसा धर्म नहीं है जो संवाद के द्वार को बंद करके खुद को सीमित करता हो। कुरान के आधार पर कुछ मामलों में सामान्य और सकारात्मक सिद्धांतों पर सहमत होना आवश्यक है, उसके बाद उचित स्वर में मतभेदों को व्यक्त करना चाहिए। वास्तव में आयतुल्ला मिसबाह ने इस्लाम और इस्लामी गणतंत्र की सैद्धांतिक रक्षा के क्षेत्र में सेवा को सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझा। उन्होंने उदारवादी और मार्क्सवादी विचारों के साथ बहस में इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था की सैद्धांतिक रक्षा में कि जो विलायत फकी पर आधारित है और प्रतिभाशाली छात्रों के प्रशिक्षण में विभिन्न मंचों पर अहम भूमिका निभाई। CIA के पूर्व एजेंट राहुल मार्क ने एक सम्मेलन में कहा था, मिसबाह यजदी ईरान में एक विशेष धर्मगुरु हैं और एक अपवाद हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अमरीकी लोकतंत्र को चुनौती दी है। धार्मिक विद्वानों का कि जो मुख्य रूप से ईश्वरीय दूतों की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं, उच्च स्थान है, क्योंकि वे नियमों और शिक्षाओं का ज्ञान देते हैं जिसके बिना समाज आध्यात्मिकता और नैतिकता की भावना से खाली हो जाता है और पतन की ओर बढ़ जाता है। इमाम हादी अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर संसार के मुक्तिदाता की अनुपस्थिति के दौरान लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए और ईश्वरीय धर्म की रक्षा के लिए विद्वान नहीं होते तो कोई ईश्वरीय धर्म में बाकी नहीं रहता और सभी धर्म से पलट जाते, लेकिन वे शक्ति के साथ दिलों के नेतृत्व को अपने हाथों में लेते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं जैसे कि जहाज का कप्तान जहाज की बागडोर अपने हाथों में रखता है। इसलिए वे ईश्वर के निकट सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। अंततः ये प्रख्यात विद्वान इस्लाम की महान हस्ती हजरत फातिमा जहरा की शहादत के दिनों में दुनिया से चला गया, जबकि अपने पीछे कई सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों के साथ साथ पुस्तकें छोड़ गया। इसी प्रकार दक्ष शिष्य जो उनका मार्ग जारी रखे हुए हैं, ईश्वर उन पर अपनी कृपा करे। दोस्तों, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अख्तर रिजवी। आज हम चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार के कृषि सुधारों के दावे के बावजूद भारतीय किसानों की देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों से नाराजगी की क्या वजह है। हजारों भारतीय किसान मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों और देश के 2 सबसे अमीर उद्योगपतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 दिसंबर को पंजाब के अमृतसर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के पुतले जलाए। किसानों का मानना है कि सरकार द्वारा लाए गए कानून उन दोनों उद्योगपतियों के पक्ष में है जो व्यापक रूप से मोदी के करीबी माने जाते हैं। अंबानी और अडानी पिछले 2 वर्षों से भारत के कृषि क्षेत्र पर नजर गड़ाए हुए हैं।
मैं एक आपकी जमीन की खातर, मेरे को जमीन भी है नहीं, पर मैं जट दी धी हां, पर मैनू मोदी ने सानू करजाई कर कर साड़ियां जमीना बिक गईयां। मैं इन्हां खातर मजदूरां खातर मैं जट दी धी हां, कल्ली आई हां।
हमारे दो सरदार हैं पंजाब के, वो 80% कुर्बानियों ने पहले दी है आजादी के। अभी साहब जितने आए हैं ना, नौजवान बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कुर्बानी देने को तैयार है।
राजे होते हैं तो जनता की बात सुनते हैं, ये बात तो सुन नहीं रहा। एक आधा प्रधानमंत्री है देश का, ये कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये तानाशाही सरकार है।
2017 में अंबानी ने कृषि क्षेत्र में निवेश करने की अपनी पहली महत्वाकांक्षा को जाहिर किया था। उनका जियो प्लेटफॉर्म्स फेसबुक के साथ मिलकर एग्रीटेक डोमेन में जियो कृषि ऐप के विस्तार पर काम कर रहा है। किसानों और कई विशेषज्ञों का मानना है कि नए कानून कृषि क्षेत्र में बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए पारित किए गए हैं, ताकि किसानों के लिए सुरक्षा उपायों को समाप्त करके उन्हें कमजोर किया जा सके। लगभग 1 महीने से किसान कड़ाके की ठंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के सिर पर जू तक नहीं रेंग रही है। विचार सुनिए प्रसिद्ध टीकाकार प्रसून वाजपेयी के।
ऐसी परिस्थितियां इस देश के सामने लाकर सरकार ने खड़ी कर दी है कि अब वो कानूनों को वापस लेती है तो इंडस्ट्रियों का एक बड़ा समूह है, सिर्फ अंबानी अडानी का जिक्र नहीं है यहां पर, एक बड़ा बिजनेस है जो ढहढहा के गिर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस देश में बिजनेस पनपेगा तो किसानों की मौत निश्चित है। मौत पसंद हो सकती है, अर्थव्यवस्था डूबनी नहीं चाहिए, शायद ये सोच इस देश की गवर्नेंस में आ चुकी है। तभी चाहे नौकरशाह हो, पॉलिटिशियन हो, सत्ताधारी हो, उसे किसानों की मौत से फर्क नहीं पड़ता है। वह तो इकोनॉमी में 2+2+4, 4+4+8 यही देखते रहना चाहता है।
कृषि कानूनों के खिलाफ राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस तरह के तथाकथित कृषि सुधार केवल अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं और कृषि सुधारों से जुड़ी किसानों की मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार इस बिल का विरोध करती आई है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके इन कानूनों को अडानी और अंबानी कानूनों का नाम दिया और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि उनकी सरकार ने जो सुधार किए हैं, किसान वर्षों से उसकी मांग कर रहे थे, लेकिन विपक्षी नेताओं ने किसानों को भ्रम में डाल दिया है। मोदी सरकार ने किसान बिल के लिए हो रहे प्रदर्शनों को गुमराह करने के लिए मीडिया साम्राज्य का भी इस्तेमाल किया और मीडिया ने भी अपनी वफादारी दिखाई।
सर्वोच्च न्यायालय की यह समझ है कि सरकार की तरफ से जो बातचीत की पहल है उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए उसने कहा कि हम एक समिति बनाते हैं और उस समिति में विशेषज्ञ होंगे, किसानों के प्रतिनिधि होंगे, आप भी होंगे, और वह कोई रास्ता निकाले। सरकार ने कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार है, अभी फिर उसने एक न्योता दिया है, लेकिन किसान संगठन सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे इसे एक आशंका और हिचकिचाहट के साथ देख रहे हैं और इसका कारण है क्योंकि हो सकता है कि यह प्रस्ताव एक खूबसूरत फंदा हो जिसमें वे फंस जाएं और आंदोलन दम तोड़ दे। आंदोलन उनके और सरकार के बीच में है। सरकार की प्रस्तुति की ईमानदारी को लेकर भी संदेह है और वह इसलिए है कि सरकार एक तरफ तो यह कह रही है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ सारे जनसंचार माध्यमों का इस्तेमाल करके, सारे सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करके यह बतलाया जा रहा है कि यह आंदोलन गुमराह लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है और यह किसानों को गुमराह करने की साजिश है। पहले इस आंदोलन को खालिस्तानी कहा गया, کہا گیا کہ اس میں ماؤوادی ہیں، کہا گیا کہ اس میں جہادی ہیں، اسے ایک سازش بتلایا گیا، اسے ودیشی تتوؤں کی سازش بتلایا گیا۔ ابھی بھی پورے بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور سرکار کی پوری طاقت کے ساتھ اس آندولن کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
یہ دلی وشو ودیالیہ کے پروفیسر اپوروا نند کے وچار ہیں۔
بھارت کی کل آبادی کا 60% کسان ہے۔
دیش کے سکل گھریلو اتپاد کا 18% حصہ کرشی پر نربھر کرتا ہے، جبکہ کسانوں کی کل سنکھیا کا 85% حاشیے پر ہے۔ 2011 میں راشٹریہ جنگننا کے بعد سے کسان پریواروں کی ماسک آئے میں معمولی وردھی درج کی گئی۔ 2016 میں کرشی پریواروں کی اوسط ماسک آئے لگ بھگ 3,140 روپے تھی۔ 52% گرامین کرشی پریوار بھاری قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
پرتی کرشی گھریلو اوسط وارشک قرض لگ بھگ 1,04,602 روپے ہونے کا انومان ہے۔ یہ رجحان بڑھتے کسان سنکٹ، شہروں کی اور پلائن، گرامین بھارت میں آتم ہتیا کی دروں سے جڑے ہو سکتے ہیں، خاص کر کسانوں کے بیچ۔ یہاں سرکار سے کچھ مہتوپورن سوال کیے جا رہے ہیں کہ اگر اسے واسطو میں کرشی سدھاروں کی اور کسانوں کی سمسیاؤں کی پرواہ تھی تو اس قانون کے پارت ہونے سے پہلے اس نے کسانوں کو اس پرکریا میں شامل کیوں نہیں کیا۔ سنسد میں بنا اچت چرچا کے دھونی مت سے کرشی بلوں کو پارت کرنے کی کیا جلدی تھی؟ بٹائی دار اور بھومیہین کسانوں کی استھتی کے بارے میں کیا یوجنا ہے؟ اس تتھ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پچھلے کچھ ورشوں میں اے پی ایم سی پرنالی یعنی ایگریکلچر پروڈیوس مارکیٹ کمیٹی، یعنی عام بھاشا میں کہیں تو منڈیاں، امید کے مطابق پربھاوی نہیں رہی ہیں، اور ایم ایس پی میں تیز گراوٹ کے خلاف کسانوں کو گدی دینے کے معاملے میں سرکار کے کندھوں پر کافی بوجھ ہے۔ لیکن موجودہ خامیوں کو دور کرنے اور واستوک سدھاروں کے بجائے سرکار کچھ کارپوریٹ کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں سماج کے سب سے کمزور ورگ کو سونپ رہی ہے اور پرانے ڈھانچے کو بدلنا چاہتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بھیڑ کو بھیڑیوں کے سامنے رکھنا۔ ایگریکلچر پروڈیوس مارکیٹ کمیٹی کیا ہے، وستار سے بتا رہے ہیں ٹیکاکار پرسون واجپئی۔
لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایکسپورٹ اس تیزی سے بڑھ رہا ہے تو باقی چھیتروں میں کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے، جس سے صرف کارپوریٹ جڑا ہوا تھا، انڈسٹری جڑی ہوئی تھی؟ آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ اگر ایکسپورٹ میں ایگریکلچر اکنامی کو الگ کر دیں تو ہمارا پورا ایکسپورٹ نیگیٹو میں چلا جاتا ہے اس دور میں، خاص طور سے جو لاک ڈاؤن اور مہاماری کا دور تھا، کیونکہ اس دور میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ایگریکلچر سے جڑے پروڈکٹس کا ہی ہوا ہے۔ صرف اپریل سے ستمبر تک اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو 53,626 کروڑ کا ایکسپورٹ صرف ایگریکلچر پروڈکٹ کا ہوا ہے اسی دور میں، اور پچھلے سال سے بھی یہ زیادہ ہے، یعنی جب لاک ڈاؤن نہیں تھا 2019 میں، اس سمے اگر اپریل سے ستمبر کا ذکر کرتے ہیں تو وہ 37,379 کروڑ تھا، جو اس بار لگ بھگ اس میں بھی اضافہ ہو گیا، لگ بھگ 19 لاکھ کروڑ کا لگ بھگ اضافہ ہو گیا۔ اور تو اور جو آرگینک فوڈ ہے وہ تو بوسٹ اتنی تیزی سے کر رہا ہے کہ 2015 میں اس کا جو مارکیٹ تھا وہ 2,700 کروڑ کا تھا۔ اس دشا میں سرکار نے جو پالیسی بنائی اور جو مارکیٹ کے حوالے چیز کی، اب 2025 تک مانا جا رہا ہے کہ 2,700 کروڑ کا بازار بڑھ کر 75,000 کروڑ ہو جائے گا، جو آج کی تاریخ میں لگ بھگ 22,000 کروڑ ہو چلا ہے۔ اس تیزی سے ایگریکلچر اور اس کے پروڈکٹ کی ضرورت سموچی دنیا میں ہے، اور بھارت کے بھیتر بھی کنزیومر صرف اسی کا ہے۔ اس دیش میں لوگوں کو اب اچھے کپڑے نہیں چاہیے، اس دیش میں بہت سارے مکان، ریئل اسٹیٹ ٹھپ ہو گیا، مکان نہیں چاہیے۔ اس دیش میں کچھ بھی چیزیں ہوں گی تو وہ 2 جون کی روٹی ہوگی، اناج ہوگا، اس سے جڑی، یعنی گروسری کی چیزوں کا مارکیٹ لگاتار بڑھ رہا ہے، اور وہی مارکیٹ اس سرکار کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ 3 قانون ہیں، اور اس 3 قانون کے پیرلل میں لیبر لا ریفارم بھی کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ دوسرا کوئی اپائے اس سرکار کے پاس بچ نہیں پا رہا ہے۔
आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि मोदी सरकार अंबानी और अडानी के हाथों में खेल रही है। किसानों का संदेह समझ में आता है, न केवल इसलिए कि ये बड़े खिलाड़ी काफी नटखट हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनके पिछले अनुभव कुछ ऐसे ही रहे हैं। क्या किसानों के ये आरोप सही हैं? पिछले साल अगस्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 42वीं वार्षिक आम बैठक में मुकेश अंबानी ने कंपनी के रिटेल आर्म्स में निवेशकों को $700 बिलियन के निवेश का अवसर दिया, जिसमें न्यू कॉमर्स प्लान के नाम पर 30 मिलियन से अधिक छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने की बात कही गई। ये विचार असंगठित खुदरा उद्योग के 80% को रिलायंस रिटेल के दायरे में लाने का था। ये भारत का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होने जा रहा है। भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी ने सफाई तो दे दी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है।
अब हमारे से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलायंस, रिलायंस को सफाई क्यों देनी पड़ रही है भाई? रिलायंस को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? पहली बात तो ये, जब ये हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये हमारी फसलों को फेल करेंगे, जब हमारी फसलें इनके मानकों पर नहीं आएंगी, आर्थिक रूप से हमारी कमर टूट चुकी होगी, और उस आर्थिक क्षति को पूरा करने के लिए हम कौन सी चीज बेचेंगे आप ये बताओ? जमीन बिकेगी तो हमारी जमीन तो गई, हमारी जमीन पर खतरा है भाई, क्योंकि इनके मानकों पर हम अपनी उपज पूरा ला ही नहीं सकते। इनके इनकी सोच में खोट है, इनकी मंशा में खोट है, यह इनकी नजर हमारी जमीनों पर ही है। हमारे किसानों की नजर में पूछ का बाल भी नहीं निकला है। पूछ तो बहुत बड़ी होती है हाथी की, अभी पूछ का बाल भी नहीं निकला है। अभी पूरा हाथी बॉर्डर के इधर ही खड़ा है, आप उन हाथियों से बात भी कर रहे हैं, हाथी सारा इधर खड़ा है। जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते, किसान सड़क से नहीं हटेंगे। जो तथा कथित इस देश के चौकीदार हैं, उन्होंने तो यह भी कहा था कि जिस दिन मेरा आपको काम पसंद ना आए, मुझे चौराहे पे बुला लेना। लेकिन किसान तो उनको चौराहे पे बुलाने की बजाय सम्मानजनक तरीके से उनके पास अपनी बात रखने जा रहे थे, तो किसानों को रास्ते में क्यों रोक दिया गया? सरकारी सड़कें जो हमारे देश की धरोहर हैं, जिस दिन हरियाणा सरकार उन सड़कों को खोद रही थी, उस दिन तो हमारे जो तथा कथित चौकीदार हैं, उनका कोई बयान नहीं आया, और एक टावर की तार कट जाने से इनको दर्द हो गया।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत करवाते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। खुदा हाफिज। Thank you.